Now I know you're very tired.
मुझे मालूम आप बहुत थके हुए हैं.
It's been a long day, but I trust a useful day.
लंबा दिन, आशा है कि उपयोगी दिन है.
But I want to take this last about 45 or 50 minutes and talk about several of the most important ministries in the Holy of the Holy Spirit in the life of the preacher.
मैं आखिरी 40-50 मिनट लूंगा और पवित्र आत्मा की सेवा के बारे में बात करूंगा जो कि एक प्रचारक के जीवन में है.
Now we're not talking about the person of the Holy Spirit.
हम पवित्र आत्मा के जन या व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. कौन है वो, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं.
About the gifts of the Holy Spirit.
हम वरदानों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं.
We're not even talking about the fruits or the graces of the Holy Spirit.
और ना ही हम अनुग्रह के वरदानों या दानों के बारे में बात कर रहे हैं, फल के बारे में बात कर रहे हैं.
We're talking about the ministry of the Holy Spirit in the life of the believer.
लेकिन हम एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं.
There are certain things the Holy Spirit does, as I said previous to, and at the point of salvation.
कुछ चीजें हैं जो पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के काम में करता है उद्धार के कार्य होने से पहले.
He may illuminate the mind.
और जैसे उसके मस्तिष्क को प्रकाशन करना.
He may convict the heart.
और हृदय को कायल करना.
But there is a point in which he regenerates the life.
और फिर उसके बाद एक समय आता है जब उसको जीवित करता है, जीवन देता है.
He imparts spiritual life to a dead soul.
एक मरे हुए आत्मा में वो आत्मिक जीवन दान देता
Paul
है.
Paul said that you were dead in your trespasses and sins, and He made you alive in Jesus Christ.
Paul कहता है कि तुम अपने पापों में मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह में तुमको जीवित कर दिया गया.
Jesus said, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God.
यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक कि किसी व्यक्ति का नया जन्म ना हो, तब तक परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता.
Unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God.
जब तक एक व्यक्ति का नया जन्म ना हो, तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता.
How do we enter the kingdom of God?
हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कैसे करेंगे?
How do we see the kingdom of God?
हम परमेश्वर के राज को देखेंगे कैसे?
By true saving faith.
सच्चे विश्वास के द्वारा जो हमें बचाता है.
So in order for a dead man to believe in Christ, he must first be made alive.
एक मृतक व्यक्ति को इससे पहले कि वो परमेश्वर पर विश्वास कर सके, उसे जीवित करे जाने की आवश्यकता होगी.
And instantaneously upon being made alive, he believes.
और झट से जैसे ही उसको जीवित किया जाता है, वो तुरंत विश्वास करता है.
But that is not the end of the Holy Spirit's ministry.
और पवित्र आत्मा की सेवकाई का अंत वहां पर नहीं हो जाता है.
That is just the beginning.
ये तो केवल आरंभ है.
Now there are certain ministries of the Holy Spirit that are initial and permanent and unchanging.
और कुछ पवित्र आत्मा की सेविकाई है जो आरंभिक है, स्थाई है और ना बदलने वाली है.
There is the indwelling of the Spirit.
वो पवित्र आत्मा के एक विश्वासी के जीवन में रहना.
There is the baptism of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा.
And there is the sealing of the Spirit.
और पवित्र आत्मा की छाप.
All happening at the point of salvation.
और ये सब पवित्र छुटकारे के समय होता है.
All unchangeable and permanent.
और ये सब स्थाई है और बदलेगा नहीं हमेशा
But
के लिए.
That is not the end of the ministry of the Holy Spirit.
लेकिन ये पवित्र आत्मा की सेविकाई का अंत नहीं है.
That is just the beginning.
और ये तो केवल आरंभ है पवित्र आत्मा की सेविकाई का कार्य का.
Experiential ministries of the Holy Spirit.
और कुछ हैं पवित्र आत्मा की सेवा जो कि अनुभव की जाती है.
After we believe.
विश्वास करने के बाद हम लोग अनुभव करते हैं.
That can grow and increase.
और ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है.
And can decrease and diminish.
और ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, निर्भर करता है अलग लोग जीवन में अलग अलग तरह से.
But if we're going to be holy men.
लेकिन अगर हम लोग को पवित्र व्यक्ति बनना है.
If we're going to preach the holy Bible.
और हमें पवित्र वचन को प्रचार करना है.
If we're going to serve a holy God.
अगर हम पवित्र परमेश्वर की सेवा
करना चाहते हैं. We must have the Holy Spirit.
तो हमारे भीतर पवित्र आत्मा होना चाहिए.
What are some of those ministries?
वो सेविकाएं कौन सी हैं?
There is the witness or the witness of the Spirit.
ये है पवित्र आत्मा की गवाही या साक्षी.
And that gives us a growing assurance of our salvation.
और ये हमें बढ़ता हुआ आश्वासन देता है हमारे
उद्धार के लिए. There is the comfort or the fellowship of the Holy Spirit.
और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति.
And that is during trial or difficulty or sorrow.
मुश्किल परेशानी परीक्षा दुख के समय हमको मिलते हैं ये.
He comes to speak peace and consolation to our heart.
वो हमारे हृदयों में आकर के शांति और संतावना और दिलासा देता है.
In this world you will have tribulation, Jesus said.
यीशु मसीह ने कहा कि इस जीवन में, इस दुनिया में तुम्हारे ऊपर दुख आएंगे, परीक्षाएं आएंगी.
And Paul echoed that by saying, all that desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution or difficulty.
और पौलुस भी इसी बात को दोहराते हुए कहता है कि वे सब लोग जो यीशु मसीह पीछे चलेंगे उनके ऊपर दुख और परेशानियां मुश्किलें आएंगी.
But Jesus said, take courage, I have overcome the world.
लेकिन यीशु मसीह कहते हैं साहस रखो क्योंकि मैंने इस दुनिया पे विजय पाई है.
But Paul said, the Lord stood with me and strengthened me.
और पौलुस कहता है परमेश्वर में प्रभु मेरे साथ खड़े हैं, मुझे उन्होंने दृढ़ किया, मजबूत किया.
The ministry of the Holy Spirit.
ये है पवित्र आत्मा की सेवकाई.
Now quickly number three.
तीसरी बात जल्दी से.
Now there are many expansive experiential ministries of the Holy Spirit. We are just mentioning several of what I believe are the most important and necessary ones.
और कई सेवाएं हैं पवित्र आत्मा की, लेकिन अनुभव जिनको कर सकते हैं, लेकिन ये इनमें से कुछ ये हैं जिनके बारे में मैं विश्वास करता हूं कि हमें जानना चाहिए सेवा के बारे में.
Especially in the life of the preacher.
और विशेष तौर से एक प्रचारक के जीवन में.
Listen, my friends.
ध्यान दीजिए मेरे मित्रों.
Gift is not enough.
एक वरदान काफी
Knowledge
नहीं है.
is not enough.
ज्ञान काफी नहीं है.
Education is not enough.
शिक्षा काफी नहीं है.
If you go to America,
अगर आप अमेरिका जाएंगे,
you go to many churches,
तो आप कहाँ जाएंगे?
Many seminaries,
बहुत ही
many
Bible schools, बहुत से Bible schools.
There are many many young men,
बहुत सारे जवान लोग.
They know good theology,
उनको अच्छा धर्म ज्ञान मालूम है.
They know church ecclesiology,
वो कलीसिया कैसे चलाना उसके बारे में जानते हैं.
They have an education,
उनके पास शिक्षा है.
They have a lot of knowledge,
उनके पास बहुत सारा ज्ञान है.
They have a lot of gift,
उनके पास बहुत सारा दान है.
And they understand many things.
और वो बहुत सारी बातें समझते हैं.
But one thing they lack,
लेकिन एक चीज की कमी
उनके पास. They lack the powerful ministry of the Holy Spirit in their life.
वो है पवित्र आत्मा की सेवा उनके जीवन में.
A third ministry of the Holy Spirit.
तीसरी सेवा पवित्र आत्मा में.
It's what we will call the teaching ministry of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा की सिखाने की शिक्षा, शिक्षा देने की सेवा, पवित्र आत्मा की शिक्षा की सेवा, सिखाने की सेवा.
What do we mean by this?
हमारा कहने का क्या मतलब है?
The Holy Spirit opens up and illuminates the truth of the Word of God in expanding ways to our minds and to our hearts.
इसका ये मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे सामने वचन को खोल के रख देता है, समझाता है, एक नए तरीके से प्रकाशित करता है.
Psalm 119, the psalmist prayed this.
और भजन 119 में भजनकार ने इस तरह से प्रार्थना किया.
Lord, open my eyes that I may behold wonderful things from your law.
परमेश्वर मेरी आंखों खोल दीजिए ताकि मैं आपके वचन में से अद्भुत बातों को देख सकूं.
In Ephesians chapter 1, Paul prays this.
और इफिसियों पहले अध्याय में पौलुस यह प्रार्थना करता है.
That God may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him.
और इफिसियों के पहले अध्याय में पौलुस प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसके ज्ञान में और समझ में और भी अधिक प्रकाशित करे, बुद्धि दे, समझ दे.
Teaching ministry of the Holy Spirit that we as preachers especially need.
और एक बढ़ती हुई, प्रगति करती हुई, फैलती हुई समझ चाहिए परमेश्वर के वचन की सेवक होने के नाते हम सबको.
We must learn good principles of Bible interpretation.
यद्यपि हमको वचन को समझाने के, व्याख्या करने के अच्छे सिद्धांतों को जानना है.
We must use all the tools that God has given us to be able to interpret the Word of God.
और वो सारे बातें जो हमें मिली हैं, जो परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए, उनका उपयोग भी करना है हमें.
And if you're educated, you must use your education to diligently study the Word of God.
और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको अपनी शिक्षा का भी उपयोग करना है परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ने के लिए, समझने
But
के
that
लिए.
That is not enough.
लेकिन वो काफी नहीं है.
The Holy Spirit has been given to lead us and to teach us in all truth.
और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको दिया गया है हर एक सत्य को समझने के लिए, जानने के लिए, उसको बढ़ने के लिए.
Remember what Jesus said.
याद रखिए परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा.
John chapter 14.
यूहन्ना उसके 14 अध्याय में.
Look at John chapter 14.
यूहन्ना उसके 14 अध्याय को देखिए.
Chapter 14 in verse 16.
यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 16 पद में देख लीजिए.
Very familiar word.
यहाँ पे बहुत ही जाने पहचाने वचन है.
Verse 16, he says, I will ask the Father and he will give you another helper that he will be with you forever.
और 16 पद में मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हें एक सहायक देगा जो तुम्हारे साथ सदा रहेगा.
He is called the Spirit of Truth.
और उसको सत्य का आत्मा कहा गया है.
The world cannot receive him because it does not see him or know him. You know him because he abides with you and he will be in you.
वो सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु ना उसे देखता है ना जानता, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा.
What is he describing? described as the Spirit of Truth.
इसको पवित्र आत्मा को किस तरह करके वर्णित किया गया है? आत्मा का सत्य, सत्य का आत्मा.
Write this verse down.
इस पद को लिख लीजिए.
John 15.
और यूहन्ना 15 अध्याय.
Verse 26.
उसका 26
पद. He says it again.
और यहाँ पे फिर से कहता है.
Look at verse 26.
अच्छा 27 पद को देखिए.
When the Helper comes, whom I will send to the Father in your name, that is the Spirit of Truth, he will testify about me.
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब कुछ करोगे मैंने तुम्हें स्मरण दिलाएगा.
And as a result of his testifying about me and instructing and teaching you, he said, you also will then testify about me.
और क्योंकि वो पवित्र आत्मा मेरे बारे में बातें सिखाएगा और मेरी गवाही देगा, इसलिए और उसके सिखाने के परिणाम स्वरूप तुम भी मेरे बारे में सिखाने पाओगे और गवाही देने पाओगे.
One of the Holy Spirit's peculiar ministries and works is to be able to expand and illuminate in our mind and heart the teaching concerning Jesus.
और पवित्र आत्मा की एक विशेष सेवकाई वो ये है कि यीशु मसीह के संबंध में शिक्षाओं को वो और स्पष्ट करता है, फैलाता है, विस्तार से हमें समझाता है.
Now look in chapter 16.
16 अध्याय में देख लीजिए.
He says it again.
वो फिर से कहता है.
Chapter 16, verse 13.
और 16 अध्याय के 13 पद में कहता है.
Look at verse 13.
यूहन्ना 16:13 में फिर से कहता है.
But he, when the Spirit of Truth comes, he will guide you into all truth.
जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सारी बातों में सत्य में लेकर के जाएगा.
He will not speak on his own initiative, but whatever he hears, he will speak and he will disclose to you what is to come.
क्योंकि वो कुछ अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातों को तुम पे प्रकट करेगा.
And what is the Spirit's ministry?
और आत्मा की सेवकाई क्या है?
To reveal to us the truth of Christ.
कि वो मसीह के सत्य को हम पर प्रकाशित करे, ये है उसकी सेवा.
To reveal to us the glory of Christ.
और वो हम मसीह की महिमा को प्रकाशित करें.
Now Jesus is very plain in these promises concerning the Holy Spirit.
और यीशु मसीह बहुत ही स्पष्ट हैं, साफ हैं पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में बात करते हैं यहाँ पे.
He said, "I will not leave you as orphans."
वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ करके नहीं छोडूंगा.
It is good to you that I go away.
वो कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं जा रहा हूँ.
I will send another helper whom the Father will send in my name.
मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक भेजूंगा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा.
He is called the Spirit of Truth.
और उसको सत्य का आत्मा कहा जाता है.
He will guide you into all truth.
और वो तुमको प्रत्येक सत्य में दिशा दिखाएगा.
Take the things of mine and reveal them to you.
और वो सब बातें जो मेरी हैं वो तुमको लेकर के तुम्हें दिखाएगा.
Concerning me.
वो मेरे बारे में तुमसे बातचीत करेगा, बताएगा, गवाही देगा.
And he will glorify me, Jesus said.
और यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरी महिमा करेगा.
Listen carefully.
ध्यान सुनिए आप इस बात को.
If you are going to preach Christ,
अगर आप मसीह का प्रचार करेंगे.
If you are going to preach the truth of Christ,
अगर आप मसीह के सत्य का प्रचार करेंगे.
You must have the ministry of the Holy Spirit to reveal to you the truth of Christ.
तो आपके भीतर पवित्र आत्मा की सेवकाई होनी चाहिए ताकि वो मसीह के सत्य को आप प्रकाशित कर सके, खुलासा कर सके.
And every time you read your Bible,
और जितनी बार अपनी वचन को पढ़ेंगे,
every time you begin to prepare a message,
और जितनी बार आप वचन को संदेश को तैयार करने लगेंगे,
you need to pray for the fresh illuminating influence of the Spirit of God upon your mind and upon your heart.
आपको बार-बार प्रार्थना करनी चाहिए एक प्रकाशन के लिए पवित्र आत्मा के इस कार्य के लिए हमारे मस्तिष्क और दिमाग पे और हृदय पे उसके वचन को समझने के लिए.
There been many times when I've been studying.
कई बार जब मैं वचन को पढ़ रहा होता हूँ.
And I've been working hard trying to discern the meaning of the word of God.
और कई बार मैं परमेश्वर के वचन के अर्थ को समझने के लिए मेहनत कर रहा होता हूँ.
And the Spirit of God will come and open up and illuminate and reveal more and more of His truth from a particular passage.
और परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता, मदद करता है समझने के लिए, प्रकाशन करने के लिए उस स्थल के अर्थ को, उसमें क्या लिखा है.
Now that doesn't mean you sit around like a lot of preachers in India.
और इसका ये मतलब नहीं कि बहुत सारे प्रचारक लोग भारत में बैठे रहते हैं, उनके समान करना है.
Saturday night, 10 o'clock.
शनिचर की रात में 10 बजे वो
बैठे हैं. Watching TV.
और टीवी देख रहे हैं वो लोग.
Click. Click.
चैनल बदलना है.
Click.
वो रिमोट की आवाज.
10 o'clock.
अरे 10 बज गए.
Saturday night.
शनिचर की रात है.
I've got to preach tomorrow.
कल तो मुझे प्रचार करना है.
And he goes in to pray.
प्रार्थना करने गया.
Oh Lord.
हे प्रभु.
Show me what you want me to preach.
आप मुझे दिखाइए मुझे क्या प्रचार करना है.
Oh Lord,
hey Prabhu,
show me what you want me to preach.
आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या प्रचार करूं?
And he goes on Sunday morning and preaches.
और संडे की रविवार की सुबह जाते हैं प्रचार करते हैं.
And he talks for 1 hour.
और एक घंटे तक प्रचार
करते हैं. And he goes around and around.
और वो गोल गोल घूमते रहते हैं.
And he reads a lot of verses.
और बहुत सारे पद पढ़ते हैं.
Tells a lot of stories.
बहुत सारी कहानी
बताते हैं. Tells a few jokes.
और कुछ मजाक
बताते हैं. Gives his testimony.
अपनी गवाही देते हैं.
And then he sits down.
और फिर बैठ जाते हैं.
And nobody understands one thing.
और कोई भी जन एक भी बात नहीं समझ पाते.
No order.
कोई क्रम नहीं है.
No structure.
कोई संरचना
no
नहीं है.
No explanation.
कोई व्याख्या नहीं है.
No application.
कोई लागू करण नहीं है.
That is not what I mean.
इसका मतलब नहीं है जो मैं क्या कह रहा हूं.
Jesus said this.
जब यीशु मसीह ने ये कहा.
Don't worry about what you're going to speak. The Holy Spirit will give you in that hour what you are to speak.
तुम इसकी चिंता मत करो कि तुम क्या कहोगे. उस समय पवित्र आत्मा तुमको बताएगा तुमको क्या बोलना है.
He didn't mean on Sunday morning in church when you stand up to preach.
उसका ये मतलब नहीं था कि रविवार की सुबह जब तुम चर्च में खड़े होकर प्रचार करने के वो
संबंध संदर्भ है.
लेकिन उस प्रतिज्ञा का संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में बात कर रहा है परमेश्वर की तुम्हें सहायता होगी. और परमेश्वर कहता है, मसीह कहता है कि मैं तुमको भेड़ों की नाई भेड़ों के बीच भेजता हूँ और मेरे नाम के कारण तुम्हें सब लोग घृणा करेंगे तुमसे.
And they will drag you in the presence of kings and authorities to give an account.
और तुमको पकड़ करके लोग लेकर के जाएंगे राजाओं के सामने अधिकारियों के सामने वार्ता करने के लिए.
That time, do not worry. The Holy Spirit will give to you what you are to say.
उस समय, उस संदर्भ में तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है. पवित्र आत्मा तुमको बताएगा तुमको क्या कहना है उन लोगों के सामने.
So, the police come into your house.
तो अगर पुलिस आपके घर में आती है,
they lock your hands up.
आपके हाथ में हथकड़ी लगाती है.
They drag you to the police station.
और आपको घसीट के पुलिस स्टेशन ले जाती है.
And they ask you this.
और आपसे ये पूछती है,
Are you a Christian?
क्या तुम मसीह हो?
Are you a preacher?
क्या तुम प्रचारक हो?
Do you believe in God?
क्या तुम यीशु परमेश्वर पर विश्वास करते हो?
Then you can claim that verse.
तब आप उस पद को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस समय में, उस घटना में.
But Saturday morning,
लेकिन शनिचर की सुबह,
Sunday morning,
रविवार की सुबह,
8:30,
8:30
you can't claim that verse.
आप उस पद को नहीं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं.
If you don't study,
यदि आपने
if you don't work hard,
आपने मेहनत नहीं
की, if you don't pay a price,
आपने कीमत नहीं
चुकाई, if you don't sweat,
अगर आपने
if you don't live in the word of God,
अगर आप परमेश्वर वचन में नहीं आते,
if you don't seek to determine the meaning of the word of God,
अगर आप परमेश्वर के वचन के अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं,
in an order that is true to the text and understandable to the people,
और आप उसको सही तरह से क्रमवार तरीके से संरचना नहीं करते ताकि लोग उसको समझ सकें और स्थल के अनुसार हो,
and then take each part and unfold it and apply it and see how it connects to the whole,
और तब फिर आप उसके हर एक हिस्से को लेकर के लोगों के सामने खुलासा रखते हैं ताकि वो समझ सकें कैसे वो संपूर्ण हिस्से से जुड़ा हुआ है,
and then take about 5 or 10 or 15 different ways that this particular word is applicable to everybody in your congregation,
और फिर उसको समझाने अर्थ समझाने के बाद 5 या 10 अलग अलग तरीके से लागू करते हैं उनके लोगों पे कि कैसे आपके जो लोग हैं उन पे लागू होता है वो स्थल.
So if Sunday morning,
अगर रविवार की सुबह
9:00
9:00
you pray,
आप प्रार्थना करते
हैं, oh Lord,
hey प्रभु,
speak to me,
मुझसे बातचीत करें,
let me hear your voice,
मुझे आपकी आवाज सुननी
है, and God speaks,
और परमेश्वर कहता है,
you fool.
परमेश्वर कहता
है, you should have been studying all week.
परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, तुमको पिछले हफ्ते अध्ययन करना चाहिए था पूरे हफ्ते.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
You must work hard.
आपको मेहनत करनी है.
You're going to be lazy.
अगर हम लोग आलसी होंगे.
You're going to be undisciplined.
अगर अनुशासित नहीं होंगे.
If you don't want to read.
अगर पढ़ेंगे नहीं हम लोग.
If you don't want to get tired.
अगर
if you don't want to get a headache.
अगर सरदर्द नहीं चाहते हम लोग.
If you don't want to sweat.
अगर हम लोग पसीना नहीं बहाना चाहते.
Go sell shoes.
तो जाइए जूते बेचिए, फिर प्रचार करना छोड़ दीजिए, कुछ और करिए.
But don't be a preacher.
प्रचारक मत बनिए लेकिन.
Because this is a holy place.
क्योंकि ये एक पवित्र स्थान है.
And this is a holy book.
क्योंकि ये एक पवित्र पुस्तक है.
And we serve a holy God.
और हम लोग एक पवित्र परमेश्वर की सेवा
करते हैं. And the man that stands here.
जो भी पुरुष यहाँ पे खड़ा होता
है. Better be a holy man.
वो उसको पवित्र व्यक्ति होना है.
And he better be a disciplined man.
और उसको अनुशासित व्यक्ति होना है.
And he better be willing to work hard.
और उसको मेहनत करने के लिए तैयार होना है.
You need the help of the Holy Spirit.
और हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है.
And every time you open this book,
और जितनी बार आप इस पुस्तक को खोलेंगे,
you need to stop for a moment,
आपको रुकना है कुछ क्षणों के लिए,
and pray,
और प्रार्थना करना है,
O Lord,
हे प्रभु,
open my eyes,
मेरी आंखों को खोलिए,
warm my heart,
मेरे हृदय को आप गर्म करिए,
illuminate my mind,
मेरे मन को आप प्रकाशित करिए,
make tender my conscience,
मेरे विवेक को आप नम्र करिए,
and speak to me this day,
और इससे मुझसे बात करिए.
You need the teaching ministry of the Holy Spirit.
आपको पवित्र आत्मा की सिखाने वाली सेवा की आवश्यकता है. हमें उसकी शिक्षा की सेवा की आवश्यकता है.
A lot of times preachers look at the Bible.
बहुत सारे टाइम प्रचारक लोग वचन में देखते हैं.
And it's like looking at that wall right there.
और बाइबल में देखना मानो इस समान है जैसे कि वो लोग उस दीवार में देख रहे हो. मतलब कुछ समझ नहीं आता.
God must open up and illuminate the truth.
परमेश्वर को हमारी आंखें खोलनी पड़ेंगी और हमें समझाना पड़ेगा कि उसके वचन में क्या है हमारे लिए.
Do you pray for the illuminating influence of the Spirit of God on your ordinary devotional reading of the Bible?
जब आप अपने आप व्यक्तिगत मनन के लिए समय व्यतीत करने के लिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो क्या आप पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा, आंखें खोलेगा, समझने में सहायता करेगा?
Do you pray for the illuminating influence of the Spirit of God on your study in the preparation for the preaching of the word?
जब हम लोग प्रचार करने की तैयारी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो क्या उस समय हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे हमको हमारे को प्रकाशित करे, दिखाए, ज्योति दे क्या है वचन में, ताकि हम सिखा सके लोगों को, सीख सके?
That's why sometimes it's very useful as preachers to get on your knees and open this book.
इसीलिए कभी कभी बहुत ही आवश्यक है प्रचारक होने के नाते अपने घुटनों पे हो जाएं और इस पुस्तक को खोल लें.
Because that shows you were dependent upon God.
क्योंकि ये दर्शाता है कि हम उसके ऊपर निर्भर हैं.
You were submissive to God.
और हम उसके अधीन हैं.
You were waiting on God to speak to you.
और हम रुके हुए हैं उस उसके लिए कि वो हमसे बातचीत करे.
You can read the Bible anywhere.
आप बाइबल तो कहीं भी पढ़ सकते हैं.
You can read it at work.
और आप,
you can read it in the bed.
आपने कारोबार में पढ़ सकते हैं, आपने बिस्तर में पढ़ सकते हैं, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं.
You can read it in the bathroom.
आप उसको शौचालय में भी पढ़ सकते हैं.
You can read it on your phone.
और आप अपने फोन पे भी पढ़ सकते हैं बाइबल.
Listen carefully.
लेकिन ध्यान सुनिए इस बात को.
Sometimes.
कभी कभी.
Occasionally.
कभी कभी.
You need to read your Bible on your knees.
आपको बाइबल पढ़ना है अपने घुटनों पे होकर के पढ़ना है.
And ask for the help of the Holy Spirit.
और पवित्र आत्मा की मदद के लिए मांगना है, सहायता मांगनी है.
It is an expanding, deepening work of illumination in our life concerning the Word of God.
और वो ये फैलता हुआ, बढ़ता हुआ, उसका प्रभाव बढ़ता हुआ सेवा है हमारे मस्तिष्क में पवित्र आत्मा की का कार्य.
A fourth ministry of the Holy Spirit.
चौथी सेवा पवित्र आत्मा की.
The sanctifying or purifying work of the Spirit.
पवित्र आत्मा का शुद्ध करने का, पवित्र करने का कार्य.
And this is related specifically to our growth in grace and holiness.
और ये विशेष तौर से संबंध रखता है हमारी वृद्धि पवित्रता में और शुद्धता में, उस अनुग्रह के से संबंध रखता है.
Remember we said this morning the work of progressive sanctification involves two things.
याद है हमने सुबह बात किया था प्रगतिमान प्रगतिशील पवित्रता के दो खंड हैं, दो हिस्से हैं.
It means putting to death and putting off the old man.
तो एक है कुछ चीजों उतारना, मारना, पुराने मनुष्यत्व को हटाना.
And it means putting on the new man.
और दूसरी तरफ कुछ चढ़ाना, नए मनुष्यत्व को चढ़ाना.
Look in the book of Romans.
मेरे साथ खोलिए रोमियो की पत्री को.
We cannot be holy by the strength of our own power.
हम लोग अपनी स्वयं की सामर्थ्य के द्वारा पवित्र नहीं बन सकते हैं.
We need the power of the Holy Spirit.
हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए.
Now remember what we said.
याद है हमने क्या कहा था?
And you need to make sure you clearly teach this to the people of God.
हमें स्मरण रखना है कि हमें इसको स्पष्टता के साथ परमेश्वर के लोगों को सिखाना है.
We have a great salvation.
हमारे पास एक महान उद्धार है.
We have been delivered. We have been pardoned from the guilt of sin.
हमें पाप के अपराध बोध से क्षमा मिल गई है, उसके दोष से क्षमा मिल गई है.
Freed from the power and dominion of sin.
और हम पाप के सामर्थ्य और नियंत्रण से हम छूट चुके हैं.
But we still have the presence of indwelling sin within us.
और हम अब हमारे पर अभी भी पाप की बची कुछ कुछ उपस्थिति है.
And we can be progressively delivered from the pollution and the influence of sin.
और हम प्रतिदिन धीरे धीरे पाप के प्रदूषण से और उसके प्रभाव से छूटते जाते हैं.
Now, if anyone says that they don't have any sin, they deceive themselves and the truth is not in them.
यदि कोई कहे हम में पाप नहीं तो वो अपने आप को धोखा देते हैं और उनमें सत्य नहीं है.
And if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness.
यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें हमारी धार्मिकता हमारे पापों को क्षमा करने में और हमारी धार्मिकता से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है.
But here in Romans chapter 8,
लेकिन यहां पे रोमियों के 8वें अध्याय में,
notice what he says in verse 12.
ध्यान दीजिए यहां पे 12 पद में क्या कहता है.
Brethren, we are no longer under obligation to the flesh to live according to the flesh.
यहां पे लिखा है इसलिए भाइयों हम शरीर के ऋणी नहीं है कि शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करें.
And here the flesh, he talks about the influence of remaining sin and the life of the believer.
और यहाँ पे शरीर के बारे में बात करते हुए ये बात करता है एक विश्वासी के जीवन में बची कुछ जो भी प्रभाव है पाप का शरीर का.
Verse 13.
13 पद.
If you are living according to the flesh, you must die.
यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करते हो तो तुम्हें अवश्य मरना है.
Notice carefully, but if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live.
परंतु यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे.
The Spirit enables us to mortify and put sin to death.
पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम शरीर को का घात करें नाश करें.
And the Spirit enables us to walk in newness of life.
और पवित्र आत्मा हमें इस बात में सक्षम करता है कि हम नएपन में नए कार में नए जीवन में चल सकें.
Paul said this, if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you.
और पौलुस कहता है कि वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया वो अब तुम्हारे भीतर वास करता है.
Also give life to your mortal bodies in order to obey not its lust.
और वो तुमको सामर्थ देगा कि तुम तुम्हारे जीवन में तुमको सामर्थ देगा कि तुम अब शरीर की वासनाओं को ना पूरा करो.
We need the power of the Spirit of God to overcome our remaining sin.
हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए ताकि हमारे जीवन में बची कुची रही सही जो जो शरीर है जो पाप का प्रभाव है वो जाता रहे.
Remember this morning we asked this question.
Yeah, याद है सुबह हमने ये प्रश्न पूछा था.
What peculiar expressions of remaining sin are specifically evident in your own life?
हमने आपसे पूछा था क्या आप अपने जीवन को जांचिए और ये पूछे कि आपके जीवन में अभी भी कौन से वो स्पष्ट वो चिन्ह है या प्रमाण है या बातें हैं जो बची कुची रही सही पाप का प्रमाण दिखाई देता आपके जीवन में.
Different men and women have different sinful tendencies.
अलग अलग आदमी और औरतों के अंदर अलग अलग पाप की प्रवृत्तियां होती हैं.
And we must pray for the power of the Holy Spirit to help us overcome those sins.
और हमें प्रार्थना करना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम उन पापों पे विजय पा सकें.
And then we need to bring specific verses from the Word of God that attack and speak to that sin.
और हमें परमेश्वर के वचन में से उन पदों को लेके आना चाहिए जो इन विशेष पापों के ऊपर आक्रमण कर सके और उनसे वास्ता कर सके.
Whether it's a temptation that comes from without,
चाहे कोई ऐसी प्रलोभन हो या परीक्षा जो बाहर से हमारे अंदर आती
है. By the leading and power of the Spirit of God, we can bring the Word of God to bear to that particular temptation.
तो अगर हमारे सामने ऐसे कोई प्रलोभन है तो हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मदद से वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं. वो हमको बुद्धि देगा उस परिस्थिति में उस परीक्षा से सामना करने के लिए.
That is what Jesus did on the Mount of Temptation.
और यही चीज यीशु मसीह ने उस परीक्षा के पर्वत पे किया था.
So God purifies us by His Word.
परमेश्वर हमको शुद्ध करता है अपने वचन के द्वारा.
17:17
भजन 17:17 भजन 17:17
sanctify them in truth thy word is truth.
और यूहन्ना 17:17 आप उनको शुद्ध कर आपका वचन शुद्ध है. यूहन्ना 17:17
so the spirit of god is the agent and the word of god is the instrument to attack remaining sin in our life.
Which
spirit of god,
sorry, which passage was that?
John 17:17 John 17.
Sorry, okay, let's carry on. Sorry.
The Spirit of God takes the Word of God and speaks to particular sins in our own life.
परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को लेता है और हमारे जीवन में जो पाप है उनमें उनके बारे में बात करता है, उनको दर्शाता है, उनसे लड़ने की सहायता करता है.
Look in the book of Galatians.
गलतियों के पत्री में देख लीजिए.
Galatians in chapter 5.
गलतियों उसका पांचवा अध्याय. गलातियों उसका पांचवा अध्याय
And Paul's concluding discussion regarding justification by grace through faith.
और पॉलस जब यहाँ पे बात कर रहा है तो उसका निष्कर्ष है इस वार्तालाप का जिसमें अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की बात हो रही है।
He warns against those two extremes we talked about yesterday.
और यहाँ पे जो दो चरम स्थितियां हैं जिनके बारे में हमने कल बात किया था उनके विरोध में पॉलस हमको चेतावनी देता है।
We were comparing justification and sanctification.
हम याद है जब हम लोग धर्मी ठहराए जाने और पवित्रीकरण की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे।
We said there were two extremes.
तो हमने बात किया था कि दो चरम स्थितियां होती हैं।
One is legalism and the other one is antinomianism.
एक है व्यवस्थावाद कानूनवाद दूसरा है गैर व्यवस्थावाद गैर कानूनवाद जिसमें व्यवस्था की चिंता ही नहीं करते हैं लोग
Legalism says I must obey and be further sanctified in order to gain or maintain my salvation.
व्यवस्थावाद में ये कहा जाता है कि हमें व्यवस्था का पालन करना या नियमों का पालन करना है उद्धार पाने के लिए उद्धार को बनाए रखने के लिए
Antinomianism says this
गैर व्यवस्थावाद तो ये कहता
freely forgiven,
मुझे तो
I'm pardoned of all my sins,
मुझे तो मुफ्त में क्षमा मिल गई मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं
I don't have to obey.
इसलिए अब हमें आगे पालन करने की आवश्यकता नहीं है
follow the commandments of the law of God.
हमें परमेश्वर की व्यवस्था की आज्ञाओं का पालन नहीं करना
just led by the Spirit of God.
मैं तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरा नेतृत्व तो मैं चलाया जाता हूँ
And if I sin or obey, God's disposition toward me does not change.
और वो ये कहते हैं कि चाहे मैं पाप करूं चाहे मैं अनाज्ञाकारिता करूं परमेश्वर का जो विचार है मेरे प्रति उसमें कोई फर्क नहीं आता बदलाव नहीं आता
Chapter 5.
वो गलत विचार है.
Look at verse 1.
गलतियों पांचवा अध्याय उसके बारे में हमने देखिए.
Which one of these extremes is he warning against?
अच्छा हमको ये बताइए गलतियों पांच पहले अध्याय में किस चरम स्थिति या विचारधारा के विरोध में पौलुस हमें चेतावनी दे रहा है?
He says for freedom God Christ set you free.
वो यहाँ पे कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है.
Free from sin.
पाप से स्वतंत्र
फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज इन द कर्स ऑफ द लॉ
व्यवस्था के श्राप के बंधन से छुटकारा दिया है
Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery.
इसलिए दृढ़ और दासत्व के जुए में फिर ना जुओ.
And the Judaizers were saying this: unless you are circumcised and keep the law of Moses, you cannot be saved.
और यहूदी धर्म के लोग आते हैं वो कहते हैं कि मूसा के नियमों के अनुसार जब तक तुम्हारा खतना नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है.
But notice verse 13.
ध्यान दीजिए 13 पद
में. He warns against the other extreme.
और यहाँ पे 13 पद में ये जो दूसरी चरम स्थिति है उसके विरोध में चेतावनी क्या कहता है वो यहाँ पे 13 पद में देखिए क्या कहता है वो यहाँ पे
called to freedom, brethren, but do not turn your freedom into an opportunity of the flesh, but through love serve one another.
हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो स्वतंत्रता को शारीरिक इच्छा पूर्ण करने का साधन न बनाओ परंतु प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो.
How are they going to avoid both extremes?
कैसे ये दोनों जो चरम स्थितियां हैं उनको कैसे उनसे बच के रहेंगे ये लोग
verse
16 पद
Walk by the Spirit.
पवित्र आत्मा के द्वारा चलो
And you will not carry out the desires of the flesh.
और तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे
Now the flesh just doesn't mean sin in our physical body.
और शरीर का मतलब सिर्फ ये नहीं है पाप जो हमारे भौतिक शरीर में पाया जाता है उसकी बात नहीं कर रहे
It talks about sins also of the mind and the heart and the will and the conscience.
लेकिन यहाँ पे पाप की बात कर रहा ना केवल शरीर की लेकिन हमारे इच्छा शक्ति में हमारे विवेक में हमारे सोच में हमारे विचार में
verse
17
for the flesh sets its desire against spirit spirit against the flesh
क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं
these are in opposition to one another
ये दोनों एक दूसरे के विरोध में
verse 18
18
But if you are led by the Spirit, you are not under the law.
यदि तुम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे.
And we'll look more closely at what that means tomorrow.
और इसका मतलब क्या है हम कल देखेंगे और भी अधिक नजदीकी से.
But here is the point.
लेकिन बात मुख्य बात ये है.
Verse 16.
16 पद.
He describes the Christian life and conduct as a walk.
और यहाँ पे मसीह जीवन और मसीह चाल चलन का वर्णन ये एक पैदल चलने के संबंध में करता है कि तरह करता है
That denotes progress.
ये पैदल चलना मतलब ये दिखाता है
effort,
प्रगति प्रगति और प्रयास
that denotes direction or goal.
और दिशा और लक्ष्य को भी दर्शाता
है. He's using that word walk to describe the Christian life and conduct.
यहाँ पे चलने शब्द का उपयोग करता है पौलुस मसीही जीवन और मसीही चाल चलन का वर्णन करने के लिए.
Walk by the Spirit.
और यहाँ पे वो कहता है कि पवित्र आत्मा के अनुसार तुम चलो.
The Spirit telling you which way to go.
पवित्र आत्मा हमको बताता है कि किस दिशा में जाना है. परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको बताता है.
Empowering and strengthening you to go in that way.
और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको दृढ़ करता है, ताकत देता है उस दिशा में चलने के लिए.
So how do we experience the power of the Holy Spirit to help us to put sin to death more and more?
तो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को कैसे अनुभव करते हैं अपने जीवन में, अपने शरीर में पाप को और भी अधिक वध करने के लिए, मारने के लिए, नाश करने के लिए पाप का?
We spend much time in prayer.
हम प्रार्थना में बहुत समय व्यतीत करते हैं.
We ask for the help of the Holy Spirit.
हम पवित्र आत्मा की मदद के लिए मांगते हैं.
We seek to confess our sin and to cleanse ourselves from all unrighteousness.
और हम अपने हम प्रयास करते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए सारी अधार्मिकता से, पवित्र आत्मा से.
Time in the word of God.
और हम परमेश्वर के वचन में और भी अधिक समय व्यतीत करते हैं.
And we bring the word of God to bear on our particular sin.
और हमारे जीवन में अगर कोई कुछ पाप है तो उनके लिए उन पे लागू करते हैं परमेश्वर के वचन को, उपयोग करते हैं उसके संदर्भ में.
Help us to overcome that sin.
और फिर हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कहते हैं कि आप हमारी सहायता करें इन पापों पे विजय पाने के लिए.
By the grace of God, we seek to continue to resist sin.
और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम प्रयास करते हैं कि हम उन पापों का प्रतिरोध करते रहेंगे.
We talked about this in more detail in previous days.
और पिछले दिनों में हमने इनके बारे में और भी अधिक विस्तार वितरण से बात किया है, विस्तार से बात किया है.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से सुनिए बात को.
After you believe.
विश्वास करने के बाद.
The God doesn't leave you alone.
परमेश्वर आपको अकेले नहीं छोड़ता.
He sends you the Holy Spirit.
वो आपको पवित्र आत्मा भेजता है.
And that Holy Spirit will give you growing assurance.
वो पवित्र आत्मा आपको बढ़ता हुआ आश्वासन देगा.
He will give you comfort in the midst of difficulty.
मुश्किलों के बीच में वो आपको संतावना देगा.
He will give you a further illumination and understanding of the truth of the Word of God.
और परमेश्वर के वचन के सत्य के संदर्भ में वो आपको और भी अधिक जानकारी देगा, प्रकाशन देगा, ज्योति देगा.
And he will give you power and strength to seek to resist sin and to grow in Christ.
और वो आपको सामर्थ देगा, शक्ति देगा, ताकत देगा, ताकि आप पाप का प्रतिरोध कर सके, विरोध कर सके, लड़ सके और मसीह में बढ़ सके.
And let's mention one last one this afternoon.
और एक और आखिरी बात हम इस दोपहर में बात करेंगे.
The one I consider most crucial and necessary for the life of the preacher.
जो मेरे विचार से एक प्रचारक के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है.
And what is that ministry of the Holy Spirit?
अब वो क्या है पवित्र आत्मा की सेवा?
The Bible calls it the filling of the Holy Spirit.
ये है पवित्र आत्मा से भरे जाना.
The filling of the Spirit.
पवित्र आत्मा से भरे जाना.
Now listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
The ordinary work of the Holy Spirit is applicable to all believers by helping them put to death sin.
जो पवित्र आत्मा का सामान्य कार्य है वो प्रत्येक विश्वासियों के ऊपर लागू होता है पाप के वध नाश करने के संबंध में.
When we talk about the sanctifying work of the Holy Spirit, it is in reference to remaining sin and renewal and Christian growth.
जब हम बात करते हैं पवित्रीकरण के कार्य के बारे में, पवित्र आत्मा का पवित्रीकरण के काम, तो हमारा मतलब है जो पाप बचा हुआ है शरीर में उसको नाश करना और मसीह की समानता में उसके स्वरूप में बनते जाना, बढ़ाते जाना.
But when we talk about the filling of the Spirit, we're talking about an extraordinary work of the Holy Spirit empowering and enabling us for ministry.
और यहाँ पे जब हम फिलिंग पवित्र आत्मा के भरे जाने की बात करें तो हम बात करें पवित्र आत्मा के एक अद्भुत अलौकिक कार्य की जो कि सेवकाई के संदर्भ में है.
And the greatest need of the preacher is for the filling and influence of the Holy Spirit.
और एक प्रचारक के लिए बड़ी आवश्यकता ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जाए, उसके प्रभाव में आ पाया जाए.
And what is the influence of the filling of the Holy Spirit?
तो क्या है पवित्र आत्मा का भरे जाना और पवित्र आत्मा का प्रभाव?
It enables us primarily to speak.
वो हमें सक्षम करता है या सहायता करता है प्राथमिक तौर से बोलने में, प्रचार करने में.
Speak to God in prayer.
बोलने के लिए सबसे पहले प्रार्थना में परमेश्वर के साथ.
And to speak to man in witness.
और लोगों से जब हम बात करते तो गवाही के टाइम, प्रचार के समय.
And almost all the references to the filling of the Spirit of God in Acts and the epistles result in speaking.
और प्रेरितों काम में और पत्रियों में जितने भी लगभग जितने भी बातें की जा रही हैं पवित्र आत्मा से भरे जाने के, उन सब के बाद बोलना, शब्दों का निकलना हमेशा उससे पाया जाता है.
Let's look quickly here in conclusion at several examples.
आइए हम यहाँ पे देखें कुछ और निष्कर्ष निकालें कुछ उदाहरणों के बाद.
Acts chapter 1.
फिर तो काम पहला अध्याय.
And verse 8.
और आठवां पद.
You have the familiar verse where the Lord promises the help of the Holy Spirit.
यहाँ पे पहला वो पद है जहाँ पे हम जिसको अच्छी तरह जानते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के बारे में.
You will receive power when the Holy Spirit comes upon you.
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे. प्रेरितों काम 1:8.
And what will be the result?
और उसका परिणाम क्या होगा? पवित्र आत्मा ने बात क्या होगा?
You will be my witnesses.
तुम मेरे साक्षी होगे.
Not just by life, but also by lip and speech.
ना केवल सिर्फ जीवन के द्वारा, लेकिन अपने मुख के द्वारा, अपने वाचा वचन के द्वारा.
The Holy Spirit brings a peculiar power that enables us to speak the word of God.
पवित्र आत्मा एक विशेष सामर्थ्य लेके आता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को बांट सकें, बोल सकें.
And when did this, when was this fulfilled?
और ये कब पूरा हुआ? ये बात कब पूरी? पहला आठ.
And chapter 2.
दूसरा अध्याय.
At the day of Pentecost.
पिंतेकोस्त के दिन में.
What does it say?
यहाँ पे क्या कहता है?
They were all together in one place.
ये सब लोग एक कमरे में थे.
Suddenly there was a rushing and a mighty wind.
और एकदम से वहाँ पे बड़ी सी आंधी जैसी लगी.
Verse 4.
चौथा पद.
And they were all filled with the Holy Spirit.
और वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए.
And what was the result?
और परिणाम क्या हुआ?
They began to speak.
वे लोग बोलने लगे.
And in this case they spoke with other tongues.
और वे लोग अन्य भाषाओं से बोलने लगे.
Not unknown, unintelligible tongues.
अज्ञान ना समझ में आने वाली भाषा नहीं, लेकिन दूसरी भाषा.
And known languages of the earth.
लेकिन दूसरी भाषाएं जिनके बारे में लोग जानते थे, जो दूसरी जगह उपयोग होती थी, वो अड़बड़ गड़बड़ नहीं बोल रहे थे.
So that all the Jews that were gathered there from all over the world heard the mighty acts of God in their own language.
तो जितने भी लोग वहां पे जमा हुए थे, जितने भी यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग जगह से आए थे, तो वे लोग परमेश्वर के महान कार्यों को अपनी स्वयं की भाषा में सुन सके थे, समझ सके थे. खाली वहां पे बड़बड़ नहीं हो रहा था.
Now mark this down.
या ध्यान दीजिए.
The ordinary work of the Holy Spirit is in the work of sanctification, helping us to mortify sin.
और पवित्र आत्मा का सामान्य कार्य हमारे जीवन में है पाप को घात करने के लिए, मारने के लिए. जो बचा हुआ शरीर हमारे अंदर है उसको खत्म करने के लिए वो पवित्र आत्मा का सामान्य कार्य.
The extraordinary work of the Holy Spirit is the filling of the Spirit that enables us to speak the things of God.
किंतु पवित्र आत्मा का अनोखा विशेष या असाधारण कार्य वो ये है कि वो हमको भरता है ताकि हम उसका कार्य कर सकें. और क्या है वो विशेष कार्य? उसके बारे में बोलना, बोलने का काम.
Look in Acts. Well, let's think for a minute. What happened to Peter when he was confronted by the little slave girl the night Jesus was betrayed?
आपको याद है कि जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया गया, धोखा दिया, उस रात पतरस से जब उस छोटी दासी ने बातचीत किया, तो क्या हुआ पतरस को?
He denied the Lord 3 times.
उसने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया. यीशु
मसीह was fearful of a little slave girl.
वो एक छोटी दासी लड़की से डर गया, भयभीत था.
40 days later.
लेकिन 40 दिन के बाद.
He stood before the whole world.
वो संपूर्ण संसार के सामने खड़ा हुआ.
He said, "Men of Israel and all of you who dwell in Jerusalem."
उसने कहा, इज़राइल के लोगों और तुम सब लोग जो यरूशलेम के निवासी.
Hear the word of God.
परमेश्वर के वचन को सुनो.
What was the difference?
क्या फर्क क्या हो गया 40 दिन में? ऐसा क्या हो गया?
He was filled with the Spirit of God.
वो 40 दिन के भीतर के बाद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परिपूर्णता भर गया था.
And it gave him courage and boldness.
और उसने उसको साहस दिया और उसके अंदर से डर निकल गया, बल दिया.
Look in chapter 4.
और चौथे अध्याय को देखिए बाप. प्रेरितों काम 4 अध्याय.
Peter and John have been arrested.
Petrus aur Yohanna ko pakad liya gaya hai.
Verse 5, the next day the rulers and elders and scribes were gathered together in Jerusalem.
Paanchve pad mein dusre din aisa hua ki unke adhikari prachin aur shastri Yerushalayim mein ekatrit hue.
Verse 7,
saatva pad.
They placed them in the center and began to say, by what power and what name have you done this?
Phir bhi unhe beech mein khada karke poochne lage, tum logon ne ye kaam kis samarthya se athwa kis naam se kiya hai?
Now look at verse 8.
Aathve pad ko dekhiye.
Peter filled with the Holy Spirit.
Petrus ne pavitra atma se परिपूर्ण होकर के
and the idea is that he had been having been filled at that moment.
और यहां पे विचार यह है कि उस क्षण पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाने के द्वारा
he was filled on the day of Pentecost.
पवित्र पंतिकुश के दिन वो भरा गया.
Now he's filled with the Holy Spirit again.
और फिर अब पुनः पवित्र आत्मा के द्वारा भर
गया. What is the result?
और फिर परिणाम क्या पवित्र आत्मा से भरने के कारण वो बोलता है
rulers and elders of the people
वो कहता है प्रजा के अधिकारियों प्राचीनों
if we're on trial today as to the benefit of the sick man as to how this man has been made well
यदि एक दुर्बल मनुष्य के साथ की गई भलाई के विषय में आज हमसे पूछताछ की जाती कि तुम ये मनुष्य को कैसे चंगा किया है
let it be made known to you and all the house of Israel that by the name of Jesus this man stands before you in perfect health
तो तुम सबको और समस्त इजराइल के लोगों को मालूम हो जाए कि ये नासरी के नाम से इसी नाम से ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा
खड़ा है
और उनकी आंखों में उसने सीधे देखा और फिर उसने उनकी आंखों में देखकर कहा किसी दूसरे के नाम में उद्धार नहीं
no other name under heaven given among men whereby we must be saved
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के सामने कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार
पाएं
किस चीज ने उसको इस तरह से बात करने पे बात किया
a fresh filling of the spirit of god
ye parmeshwar pavitra atma ki ek nayi taazgi se bhara jana tha
and it gave him courage and it gave him boldness
aur usne usko sahas diya aur usne usko bal diya
and notice verse 13
aur yahan dhyan diye 13 par
it says and when they saw that peter and john had a phd from jerusalem seminary they marveled
और जब उसने देखा कि यहुन्ना और पत्रस के पास यरूशलेम के विश्वविद्यालय से डॉक्टरी की डिग्रियां थी और वे ले अचंभित हुए
Is that what it says?
क्या यहाँ पे यही लिखा है?
That's not what it says.
ये तो नहीं लिखा है ना यहाँ पे?
What does it say?
क्या लिखा है यहाँ पे?
When they saw the confidence of Peter and John.
और यहाँ पे लिखा है कि जब उन लोग ने पत्रस और यूहन्ना के साहस को
देखा और
वो लोग जान गए कि वे अशिक्षित हैं और साधारण मनुष्य हैं
they were marveling and they recognized that they had been with Jesus
वे अचंभित हुए और जान गए कि वे यीशु के साथ रहे हैं
they had been with Jesus
वह यीशु के साथ
थे walk with Jesus
यीशु के साथ चले थे
talk with Jesus
यीशु मसीह से बात करते
they had seen the resurrected Lord
और यीशु मसीह जो जीवित था उसको देखा था
John says this
और यूहन्ना ये कहता है
what we have seen with our own eyes
जिसको हमने अपनी आंखों से देखा
है what we have heard with our own ears
जिसको हमने अपने कानों से सुना है
what our hands have touched and handled concerning the word of life
और जिसको हमारे हाथों ने स्पर्श किया है जीवन के बारे में
this we proclaim to you
उसकी हम तुम्हें गवाही देते हैं
and what gave them that power authority and confidence
aur kis cheez ne unhe samat adhikar aur bharosa ya sahas diya
it wasn't their gift
ye unka vardaan nahi tha
they didn't pull out their seminary degree
unhone apne bible school ya seminary ki degree
nahi nikali start talking theology
aur wo dhan vigyan ke bare mein baat karne
lage they tried to argue in their own wisdom
unhone apne buddhi mein baat cheet karne ki koshish nahi ki
they were uneducated and untrained men
ve log na padhe ashikshit sadharan log the
but they spoke with boldness
लेकिन उन्होंने साहस से
कॉन्फिडेंस
भरोसे के साथ अधिकार के साथ
डायरेक्टनेस
और सीधे तौर पे
एंड दे प्रोक्लेम द ट्रूथ ऑफ जीसस क्राइस्ट
और उन्होंने यीशु मसीह के सत्य का प्रचार किया
एंड हाउ डिड दे डू इट
और ऐसे कैसे
उन्होंने कर लिया पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड
परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा
बाय नेचर आई एम ए कावर्ड
और स्वभाव से तो मैं डरपोक हूं
बाय नेचर वी आर ऑल कावर्ड
स्वभाव से तो हम सब के सब कायर हैं
But when a man is filled with the Spirit of God,
लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाता है,
he is changed into another man.
तो वो बदल जाता है एक नए व्यक्ति में.
Look at the end of the chapter.
आइए हम ऐसा देखिए इस अध्याय के अंत में.
Acts chapter 4.
प्रेरितों का चौथा
अध्याय. Peter and John are released.
और यहाँ पे यूहन्ना और इसको छोड़ दिया गया.
Verse 23.
23 पद.
And they return to their own people.
और वो अपने लोगों के पास चले आए.
And report everything that happened to them.
उन सब के साथ जो जो हुआ था उनको बताया उनके बारे में.
And when the people heard this, they began to complain and wonder how in the world they were going to escape this persecution.
और जब लोगों ने ये बात सुना तो वो लोग बड़बड़ाने लगे और शिकायत करने लगे, सोचने लगे कैसे वो लोग इस सतावनी से भागेंगे, बचेंगे.
Is that what happened?
क्या यही हुआ 24 पद में?
No.
नहीं.
What does it say?
क्या कह रहा 24 पद यहाँ पे?
When they heard this, they lifted up their voices with one accord.
और जब उन्होंने ये सुना तो वे एक चित, एक मन होकर के ऊंचे शब्द से कहने लगे.
And they praised God as being the creator of heaven and earth.
और वो परमेश्वर को सराहना करने लगे आकाश और पृथ्वी समुद्र के सृष्टिकर्ता होने के नाते.
And they understood that this was the fulfillment of the word of God, and they quoted Psalm 2.
और वो लोग समझ गए कि ये परमेश्वर के वचन का पूरा होना है और उन्होंने भजन दो को उद्धृत किया.
Before they didn't understand anything.
पहले वो लोग कुछ भी नहीं समझते थे.
Now they had the Spirit of God.
अब उनके पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा है.
And they could understand their present circumstance was according to the prophecies of the Old Testament.
और वो समझ गए कि उनकी वर्तमान की परिस्थिति पुराने नियम की भविष्यवाणियों के अनुसार हो रहा
है. And they applied that prophecy of the Old Testament to their present situation.
और उन्होंने पुराने नियम की भविष्यवाणी को अपने वर्तमान की परिस्थिति पे लागू कर दिया.
And what did they pray?
और उन्होंने क्या प्रार्थना
की? Verse 29.
देखिए 29 से पढ़ लेंगे.
Take note of their threats and grant your bond servants that they may speak your word with all boldness.
हे प्रभु उनकी धमकियों को दो, अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरे वचन को पूर्ण निर्भरता से सुनाएं.
And when you extend your hand to heal and signs and wonders take place through the name of Jesus.
तू चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा और आशीकरण और चिन्ह तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से द्वारा किए जाएंगे.
Now look carefully and closely at verse 31.
अब ध्यान दीजिए 31 पद को बड़े नजदीकी से.
And when they had
और जब उन्होंने प्रार्थना किया,
place they were staying was shaken.
वो स्थान जहाँ पे वे एकत्रित थे हिल गया.
And they were all filled with the Holy Spirit.
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए.
A fresh filling of the Holy Spirit.
एक नई ताजी पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जाना.
An extraordinary infusion of divine power.
एक अनोखी अलौकिक ईश्वरीय सामर्थ्य का प्रदान किया जाना.
And look at the verse.
और इस बात को देखिए.
What was the result?
उसका परिणाम क्या हुआ?
They spoke.
वो लोग बोलने लगे.
They spoke the word of God.
वे परमेश्वर के वचन को सुनाने लगे.
With boldness.
निर्भीकता के साथ.
And you trace that phrase all the way through the book of Acts.
और आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस स्थल इस बात को देखते रहिए.
And you even see Paul referencing it in Ephesians chapter 5 and verse 18.
और इफिसियों के पांचवें अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है,
Do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit.
और इफिसियों पांचवें अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है कि दाखरस से नहीं परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा भरे
रहो. Result?
और उसका परिणाम क्या है?
Speaking.
बोलना.
Speaking to one another.
एक दूसरे से बोलना.
And psalms and hymns and spiritual song.
और भजन और आत्मिक गीतों से.
Listen carefully.
ध्यान सुनिए बात को.
The greatest need for most preachers in our generation.
सबसे बड़ी आवश्यकता ज्यादातर प्रचारकों के लिए हमारे इस वंश में.
Is a holy character.
एक पवित्र चरित्र.
And the knowledge of the word of God.
परमेश्वर के वचन का ज्ञान.
And listen carefully.
और ध्यान सुनिए बात को.
The anointing and the filling of the Spirit of God.
पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक और भरे जाना.
You can't get it in seminary.
ये आपको सेमिनरी में नहीं मिल सकता.
You cannot get it in this room.
आपको इस कमरे में नहीं मिल सकता ये.
No man can give it to you.
कोई आदमी आपको नहीं
दे सकता ये. It only comes from God.
ये केवल परमेश्वर से आता है.
It is a repeatable, expanded experience of the Spirit of God.
ये दोहराता हुआ, बढ़ता हुआ परमेश्वर का अनुभव है लोगों के लिए.
And what is the result?
और परिणाम क्या होगा लेकिन?
They speak.
ये लोग बोलते हैं.
And when a man is filled with the Spirit of God.
और जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा भरा रहता है.
It affects four things.
चार चीजों पे असर होता है.
There is expanded illumination in the mind.
मस्तिष्क में उनके समझ में बढ़ोतरी होती है.
There is courage and confidence in the heart.
उनके हृदय में साहस और भरोसा होता है.
There is utterance of speech.
और उनके बोलने में शब्द निकलते हैं.
And there is a willing to sacrifice and pay any price in the life.
और अपने जीवन में बलिदान करने के लिए, त्याग करने के लिए, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं.
A coward becomes a fearless man of courage.
एक डरपोक व्यक्ति, कायर व्यक्ति, बिना भय का निर्भीक व्यक्ति बन जाता है.
Now let me ask you a question.
मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं.
Have you ever been filled with the Spirit of God?
क्या आप कभी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा भरे गए हैं?
I didn't ask you if you knew theology.
मैं ये नहीं कह रहा कि आप धर्म विज्ञान में जानते हैं.
I didn't ask you if you had gift.
मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आपके पास
वरदान
है.
I didn't ask you if you've been to Bible college.
मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप बाइबल स्कूल गए कि नहीं.
I didn't ask you whether you are a preacher.
मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप प्रचारक हैं कि नहीं.
I ask you one question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं.
Have you been filled with the Spirit of God? Have you known the power of the Spirit of God? Have you known what Paul and Jude mean when they say praying in the Holy Ghost?
और जब पौलुस बोलता है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, उसका मतलब समझते हैं?
And they're not talking about speaking in tongues.
और वो लोग अन्य भाषा में बोलने की बात नहीं कर रहे.
They're talking about an experiential influence of the Spirit of God that falls upon a man in secret prayer and illuminates his mind.
और यहां पे ये लोग अन्य भाषा में बोलने की बात नहीं कर रहे, लेकिन उस अनुभव की बात कर रहे हैं जब गुप्त में प्रार्थना करते परमेश्वर सहायता करता है और समझ में वृद्धि होती
and
है.
He opens his mouth.
और उसका मुख खुल जाता है.
And he prays.
और वो प्रार्थना करता है.
And an hour.
एक घंटा.
It's like a minute.
एक मिनट के समान.
But without the ministry of the Spirit of God in prayer.
लेकिन बिना पवित्र आत्मा की सेवकाई प्रार्थना
में. A minute is like an hour.
एक मिनट एक घंटे के समान होता है.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
In prayer.
प्रार्थना में.
In worship.
In
preaching,
प्रचार में.
Have you known the influence of the Spirit of God?
क्या आपने पवित्र आत्मा के प्रभाव को जाना है?
Have you known enlargement and expansion in preaching?
क्या आपने वृद्धि और प्रचार में उसके अनुभव को जाना है?
Have you known what the old men used to call getting light on our feet?
और क्या आप उस बात को जानते हैं जो वृद्ध लोग, पहले प्रभु के लोग कहते थे, हमारे पैरों पे ज्योति पाना.
Many men when they preach,
कई लोग जब प्रचार करते हैं,
they have 40 pages of notes.
उनके पास 40 पन्ने होते हैं नोट्स के.
And they read every word.
और वो एक एक शब्द को पढ़ते हैं.
And they're looking at their notes.
और वो अपने शब्द को
And they're reading their notes.
और उनको पढ़ रहे होते हैं.
And whatever they say is true.
और जो वो कह रहे
हैं सत्य होता है.
बिल्कुल सही होता है.
It is right.
सटीक होता है.
But there's no power.
लेकिन कोई सामर्थ्य नहीं होती उसमें.
There's no influence.
कोई प्रभाव नहीं होता.
There's no authority.
कोई अधिकार नहीं होता.
There's no what the men of God used to call unction and anointing.
तो जो परमेश्वर के लोग कहते थे उसमें कोई अभिषेक नहीं होता है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती है.
Well, lots of times we pray for someone when he preaches.
और कई बार जब हम लोग प्रार्थना करते हैं किसी के लिए जब वो प्रचार करने
oh,
आ रहे
Lord,
हैं. हे प्रभु.
Brother Joe's about to preach.
भाई जो प्रार्थना करने आ रहे हैं.
Help him to preach.
आप उनकी सहायता करिए प्रचार करने.
Fill him with the Spirit.
अपने आत्मा से बात
कीजिए. Oh Lord, fill him with the Spirit.
हे परमेश्वर अपनी आत्मा से बात
कीजिए. Here comes Brother Joe the pulpit.
यहां पे आए भाई जो.
brothers and sisters.
भाइयों बहनों.
I want to say something here today.
आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ.
Let me find my notes.
मुझे अपने नोट्स ढूंढने हैं.
I must have left them in the study.
शायद मैं भूल गया अपने घर में उसको.
And he does that for 30 minutes or an hour.
और फिर वो 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक करता है.
And he goes back to sit down.
और फिर वो चला जाता वापस.
And somebody stands up and prays.
और फिर कोई खड़ा होता
कहता है. Oh Lord.
हे प्रभु.
We thank you. You fill Brother Joe with the Spirit.
हम प्रभु आपको धन्यवाद दे, आपने भाई जो को पवित्र आत्मा से भर दिया.
Listen to me, my friend.
ध्यान सुनिए मेरे मित्रों.
Your great need.
आपकी बड़ी आवश्यकता
है पावर ऑफ द होली गोस्ट,
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य.
व्हेन यू प्रे,
जब आप प्रार्थना करें,
एंड व्हेन यू प्रीच,
जब आप प्रचार करें,
इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडेड एक्सपीरियंशियल वर्क ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड.
ये अनोखिक बढ़ती हुई अनुभव है परमेश्वर के आत्मा का.
एंड अ मैन मे व्हिस्पर,
हो सकता है एक आदमी फुसफुसाए,
or he may have a loud voice.
हो सकता है एक आदमी के पास बड़ी जोर की आवाज हो.
But if he has the power of the Spirit of God,
लेकिन अगर उसके पास परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य है,
there is intensity.
तो उसमें एक तीव्रता होती है.
There is directness.
तो उसमें एक सीधापन.
There is authority.
उसमें अधिकार होता
है. There is boldness.
उसमें साहस होता है.
Not in the man.
आदमी में नहीं.
He is changed into another man.
वो एक अलग आदमी बदल जाता है.
And it's as if he was clothed with the Spirit of God and he stepped out of the way and he is watching himself preach.
और ऐसा मानो कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा ढका हुआ है और वो स्वयं को देख रहा है, प्रचार करते हैं.
Have you ever had that experience?
क्या आपको कभी वैसा अनुभव हुआ है?
It is an experience.
ये एक अनुभव है.
And our great need
और हमारी आवश्यकता
is the power of the Spirit of God.
परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य.
And there's only one place to get it.
और केवल एक ही जगह हमको मिल सकता है वो.
In secret prayer.
वो है गुप्त में प्रार्थना में.
You must be a man of prayer.
इसलिए आपको प्रार्थना का व्यक्ति होना
है. The Holy Spirit gives us assurance.
पवित्र आत्मा हमको आश्वासन देता है.
The Holy Spirit comforts us in difficulty.
पवित्र आत्मा हमको मुश्किलों में संयम देता
है. The Holy Spirit leads us and teaches us the truth.
पवित्र आत्मा हमको सत्य सिखाता है.
The Holy Spirit sanctifies us as we are renewed in the new man.
पवित्र आत्मा हमको हमारी सहायता करता है जब हम नए व्यक्ति बनते चले आते हैं.
And the Holy Spirit gives us power.
और पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है.
And what is the result?
और उसका परिणाम क्या है?
We speak.
हम लोग बोलते हैं.
A lot of men have gift.
बहुत सारे लोग पास वरदान
है. They can talk all day.
वो लोग पूरे दिन बातचीत कर सकते हैं.
But they don't have the power of the Spirit of God.
लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य की परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य नहीं उनके अंदर.
Your great need.
आपकी बड़ी आवश्यकता है, मेरी बड़ी आवश्यकता
है. If you're going to preach,
अगर आप प्रचार करना चाहते हैं,
is the power of the Spirit of God.
परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य चाहिए.
Let's pray.
आइए हम लोग प्रार्थना करें.